आदरणीय भ्राता राजू भाई जी से हम सभी परिचित हैं। कल भी आपसे हम सब ने लाभ लिया। आज हमारा इस भट्टी का अंतिम क्लास से कहा जाता है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो अभी अंतिम क्लास हम राजू भाई जी से सुनेंगे। क्लास का विषय है ईश्वरीय नियम मर्यादाएं संपूर्ण पवित्रता। हम सब ने ईश्वरीय जन्म लिया, इसलिए ईश्वरीय नियमों का भी पता है, ईश्वरीय मर्यादाओं का भी पता है। परंतु कहाँ कहाँ वो नियम और मर्यादाओं के ऊपर चलना हमें कभी कभी कठिन लगता है, तो उसकी आसान विधि हम आदरणीय राजू भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। शिव बाबा की महिमा का गीत सुन रहे थे। सावन मास में विशेष आप सबने सुना होगा, भक्तों की बहुत भावना शिव बाबा के प्रति रहती है। बहुत दूर दूर से गंगा जल लेकर के शिव मंदिरों में पहुंचते हैं भक्त लोग, हजारों भक्त। सोमवार का दिन विशेष गया हुआ है, सोम रस पिलाने वाला बाबा। सिर्फ हम बच्चों का बाबा नहीं है, लेकिन सभी का बाबा है। भक्तों को भी भक्ति का फल देता है, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करता है। हम तो उसके बच्चे बन गए। हम बच्चे अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा के पास जो कुछ है उन सब के हम अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन संपूर्ण अधिकार लेने के लिए बाबा ने कुछ शर्तें, कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं हमारे आगे रखी हैं। नहीं तो कहेंगे कि इनको ही क्यों स्पेशल दिया जाता है। तो बाबा ने भी हम सबको कुछ ऐसी मर्यादाएं सिखाई हैं जो सब पालन नहीं कर सकते। बाबा के बच्चे बहुत दिल से उसे समझते हैं, पालन करते हैं और पूरा अधिकार ले लेते हैं। सबसे पहले शिव बाबा की सभी आज्ञाओं को पालन ब्रह्मा बाबा ने किया, और ब्रह्मा बाबा के कदम हम लोगों के लिए कायदे बन गए। नए कायदे कुछ नहीं हैं, नया स्टेप लेने की बात नहीं है, लेकिन जो स्टेप्स बाबा ने उठाए, जो कदम उठाए, ब्राह्मण बच्चों को कहता है तुम कदम पर कदम रखते चलो और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते हैं। बाबा कई बार अपने अनुभव और साक्षी होकर के खुद भी सुनाते हैं, और कभी कभी शिव बाबा भी उनके अनुभवों को हमारे आगे प्रस्तुत किया, ब्रह्मा ने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो जो कुछ हमारे बाबा ने किया, हम सब ब्राह्मण आत्माएं उसको फॉलो करती हैं, वही हमारे लिए नियम और कायदे हैं। और जो शिव बाबा की ब्रह्मा मुख से हम सबको शिक्षाएं मिली हैं, वो शिक्षाएं ही हमारे लिए मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं क्या हैं? जो कुछ बाबा ने हमें सिखाया है, शिक्षाएं दी है, पढ़ाया है, वो मर्यादाएं हैं। और जो ब्राह्मण आत्माएं जितना नियम कायदे मर्यादाओं का पालन करती हैं उतना उन्हें सर्व अधिकार सर्व अनुभूतियां होती हैं। अगर नंबर वार कर रहे हैं इसलिए अनुभव भी नंबर वार होते हैं। तो क्या ऐसे कायदे बाबा ने बना करके हमारे आगे रखे? सबसे पहला एक नियम, एक कायदा जो ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों को हम सब ने देखा, बहुत दिनचर्या में एक्यूरेट रहे, दिनचर्या में कभी अलबेलापन नहीं, अमृत वेले से रात्रि तक के लिए जो कोई नियम बनाए उसमें जरा भी मनमत और परमत मिक्स न हो, कुछ भी हो जाए उसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। अमृत वेले उठना ही है, किसी भी हालत में हम सब देख रहे हैं हमारी दादियों की एज इतनी हो गई, लेकिन आज तक भी आप लोगों ने देखा होगा दादी जान की अमृत वेला कभी मिस नहीं करती, एक दिन भी नहीं मिस करती, नियम बना हुआ है। हम सभी भी इस नियम को कायदे अनुसार पालन करें, क्योंकि अमृत वेले बाबा से हम सब वरदान सब शक्तियां ले सकते हैं। दादी तो यहां तक कहती हैं कि अपने बेडरूम में नहीं योग करो, अगर आप संगठित रूप में नहीं जा सकते इकट्ठे हो सकते सवेरे सवेरे तो जैसे अपने घर में एक छोटी सी पूजा की कोठरी होती है ऐसे ही एक स्थान बना करके बाबा की कास्केट बाबा का फोटो रख करके अगरबत्ती जला करके एक सुंदर आसनी बनाकर बैठो, बहुत सुंदर वातावरण बना करके गीत बजा दो, मस्ती से योग करो, बाबा का आवाहन करो। तो अमृत वेले का नियम हम सब जितना पक्का कर ले उतना हमारे लिए बहुत कुछ प्राप्तियां हैं, बहुत फायदे हैं। इसमें अलबेला पन्ना आए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हमारी दिनचर्या व्यस्त क्यों न हो, लेकिन अगर हम दृढ़ता का संकल्प बाबा के घर में करके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अमृत वेला कोई भी दिन मिस नहीं होगा। तो आपने इस भट्टी से संकल्प लिया है सबने? जिन्होंने लिया है हाथ उठाओ, सब करेंगे पक्का करते हैं? चलो कोई भी नहीं भी करते हो तो आज इस क्लास के अंतिम सत्र में आप सब पक्का वायदा करना कि बाबा एक दिन भी हम बिना गुड मॉर्निंग किए हुए कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। सबसे पहले आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा की स्मृति आए, फिर बाद में भले कोई दूसरी आए, पहले संकल्प में बाबा से मिलन हो, ये पहला नियम बनाया बाबा ने, कायदा बनाया और हम सब ने इसको फॉलो किया। दूसरा बाबा कहता है कि नियमित रूप से ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, मुरली हमारे जीवन का ब्राह्मण जीवन का आधार है। इसमें अलबेला पन्ना है, कई ब्राह्मण चलते चलते सोच लेते हैं मुरली तो साकार बाबा की वही है, रिपीटेड है, कई बार सुनी है, पुराने हो गए हैं तो लगता है कि हमने बहुत बार सुन ली है, लेकिन आज तक नियम बना हुआ है चाहे कितनी बार भी मुरली सुनी हो। जानकी दादी के अनुभव में है एक जगह पर कि बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा मैं पाश विदानर बनने के लिए अष्टरत्नों में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करूं, तो बाबा ने उन्हें कहा तुम 12 बार मुरली पढ़ो, एक ही मुरली 12 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ी होगी, पढ़ती रहती है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं के भोजन हमारी खुराक क्या है? मुरली है। मुरली को नियमित रूप से रोज सुनना ही है। कोई इत्तेफाक कोई कारण हो गया तो उसका सार, उसका वरदान, उसका स्लोगन पूछ करके भी, फोन करके भी बहनों से उस नोट करना अपने पास। हाजिरी जरूर लगनी चाहिए। और क्लास में गए तो डबल मार्क्स मिल जाएंगे, क्लास की हाजिरी अलग होती है। साथ साथ बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी नियम बने हुए हैं, क्योंकि चलते चलते कई बार अलबेलापन आ जाता है। संकल्पों को ब्रेक देना जिससे वो शक्तिशाली बन जाएं। हर घंटे एक मिनट अगर कभी भूल भी जाए तो ये जो पांच बार रिकॉर्ड बजते हैं मधुबन की दिनचर्या के अंदर, 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, फिर 9:30 बजे, ये 5-6 बार नियम बना हुआ है। कोई भी दिन यहाँ ये मिस नहीं होता। तो ये एक दिनचर्या का नियम बना करके रोज बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करो। सिर्फ काम नहीं रोक दो लेकिन बुद्धि के संकल्पों की गति को देखो, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, फुल स्टॉप। एक सेकंड के लिए भी अगर वो संकल्प शांत हो जाएंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे और बाबा की याद आ गई तो और शक्तियां भर जाएंगे उसके अंदर। तो ये बाबा ने हमारे लिए जैसे नियम बना करके दिए, हमारे दिनचर्या के कायदे हैं। और भोजन की परहेज तो हम सब जानते ही हैं, बाबा को भोग लगाए बिना नहीं खाना। कैसे कैसे विचारों से भोजन बनते हैं, बनाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। खेती से भी जो आता है वो भी किस किस विचार से लोग पैदा करते हैं। लेकिन भोजन जरूरी है शरीर को, जितना जरूरी है उतना ही खाया जाए, लेकिन उसको भोग लगा करके योग युक्त बहुत प्यार से बाबा को खिला करके खाना, ये नियम बाबा ने बना के दिए हैं। और सब ब्राह्मण आत्मा इन नियमों को जानती हैं, ऐसा भी कोई नहीं है कोई कहे मुझे पता नहीं है। लेकिन कई बार अलबेलेपन के कारण इसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। लेकिन अगर दृढ़ता का संकल्प ले लो, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, तो सब रास्ते निकल आते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय नियम और दिनचर्या का संपूर्ण रीति से पालन करके ब्राह्मण जीवन में सहज योगी, सहज पुरुषार्थी बाबा अपने बच्चों को मेहनत करता हुआ देखना नहीं चाहता। बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। कईयों को बहुत मेहनत का अनुभव होता है। तो मेहनत का कारण है कहीं न कहीं कोई न कोई नियम मर्यादा का उल्लंघन, मेहनत में डाल देता है। जरा भी गफलत की मेहनत का अनुभव होने लगा, योग नहीं लगता, क्या करूं, कुछ खुशी नहीं रहती, क्या करूं, ये प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, फिर उलझ जाते हैं, मेहनत का अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही चलना है क्या, यही लाइफ है क्या। लेकिन जो नियम और मर्यादा में पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए हमारा वायदा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए मुझे पालन करना ही है, तो दिनचर्या में एक्यूरेट रहें, पहली बात है। दूसरी बात है कि मन और बुद्धि, ये दोनों हमारी बहुत चैतन्य शक्तियां हमें बहुत सहयोग दे रही हैं। अगर किसी का मन चंचल हो, बुद्धि भटकने वाली हो, योग कैसे लगेगा? इसलिए एक नियम बना लो कि मन और बुद्धि को फ्री नहीं रखना है, इधर उधर की बातों में नहीं रखना है, परमत मनमत पर चिंतन पर दर्शन में इसको नहीं लगाना है। ज्ञान योग और सेवा जो बाबा ने हमें चारों सब्जेक्ट दी हैं, उन चारों सब्जेक्ट में मन सदा बिजी रहे, बुद्धि सदा उसके प्रति सोचे, दूसरे को मारने आने की मार्जिन ही न मिले। तो अगर मन बुद्धि पर पूरा अटेंशन का पहरा है तो ये अपने ही कार्य में बिजी रहते, फ्री नहीं रहते। फ्री रहेंगे तो इधर उधर की व्यर्थ बातें आएंगी, प्रश्न उठ जाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, पर चिंतन चल जाएगा, पर दर्शन भी होने लगे, क्योंकि फ्री है। अगर कोई ऐसे चिंतन करता है तो समझ रहा हो इसको ज्ञान योग के लिए कोई भी प्रकार से मन को होमवर्क नहीं देना आता है। तो रोज सवेरे सवेरे बाबा कहता है पूरे दिन के लिए मन की दिनचर्या को सेट कर दो, क्या सोचना है आज। अगर बहुत अच्छी बुद्धि अच्छे चिंतन है, लेखनी अच्छी है, लेखने का अभ्यास है, तो सबसे अच्छा साधन है मन बुद्धि को बिजी करने का, अच्छे अच्छे लेख लिखो, जब समय मिल जाए लिख डालो, कुछ न कुछ चिंतन जो चल रहा है उसको डायरी में उतार दो, एक पेज लिखो, दो पेज लिखो। जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है, अगर मंथन अच्छा चल रहा है तो मक्खन निकलता है और मक्खन को जो खाए उसको शक्ति मिल जाए। तो अगर अभ्यास करेंगे मन और बुद्धि को बिजी रखने का तो बहुत अच्छा अच्छा मक्खन निकाल सकेंगे, बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, खुद भी शक्तिशाली होंगे और दूसरी आत्माएं भी जो संपर्क संबंध में आएंगे वो भी शक्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए कभी भी समय मिले, कोई काम नहीं है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बाबा का इतना साहित्य है। हम तो देखते हैं जगदीश भाई ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं अपनी ज्ञान की। अगर मेरे पास तो जब कभी थोड़ा भी फुर्सत मिलती है, 15 मिनट 20 मिनट भी मिलती है, मेरे पास पुस्तकें रहती हैं, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता, पुस्तकें साथ का अनुभव कराने लगती हैं। और बड़े अच्छे अच्छे चिंतन के लिए जरूरी अच्छी पुस्तकें। तो एक नियम बना लो, जब समय मिले कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा चिंतन करो और अच्छा लिखो। लिखने का अगर अभ्यास है तो सबसे अच्छा है। रोज डायरी का एक पेज समझो मुझे लिखना है कुछ अच्छा चिंतन करके, अब देखें कितनी बुद्धि विशाल बनती जाती, कितने अच्छे अच्छे विचार इसके अंदर आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। चौथी एक बात जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हमारा चरित्र जिस पर कभी आंच ना आ जाए। ब्राह्मणों के चरित्र का गायन है, बाबा के चरित्रों का गायन है, हम बच्चे बाबा के चरित्रवान बच्चे हैं। ब्राह्मण जीवन में कोई अंगुली न उठाए इसका चरित्र ऐसा है, जबकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कहें वो चरित्र का प्रॉब्लम आ गया है। सबसे अधिक गिरावट चरित्र की गिरावट है, कहते हैं सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी आ गई। पैसा है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन चरित्र खराब है व्यक्ति का तो सब होते भी बेकार है। बाबा ने अपने बच्चों का चरित्र कितना ऊंचा बनाया है, और चरित्र के अंदर सबसे पहला आता है अपनी दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता, बहुत स्वच्छता। किसी को देख करके मेरी दृष्टि में बॉडी कॉन्शियस के संकल्प उत्पन्न न हो। अब ये सहज हो जाए, क्योंकि हम सब 84 जन्म ही देह के साथ रहे हैं, भले 21 जन्म आत्म मानी देही मानी स्टेज रही है, लेकिन इस शरीर के साथ ही हम पूरा समय पार्ट बजाते आए हैं, और 63 जन्म तो फुल बॉडी ने अपनी कॉन्शियस बना दी कि मैं ही हूं ये सब कुछ, और इसके कारण ही सब विकार उत्पन्न हुए। जितनी समस्याएं हैं देश की, जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आज सरकार उनकी खोज के कैसे ठीक करें, कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, बहुत बड़ी कड़ी कड़ी सजाएं फिक्स करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक जड़ को काटा नहीं है, पत्तों को पानी देने से क्या होगा? और बाबा ने यहां जड़ को पकड़ा कि बच्चे, इन सब विकारों की जड़ है देहाभिमान। सब पापों का बाप है देहाभिमान। और सभी व्यक्ति, कोई भी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, आचार्य हो, बड़ा से बड़ा फिलोसोफर हो, हर एक फुल बॉडी कॉन्शियस है। और हम भाग्यशाली बाबा के बच्चे, जिनको ज्ञान मिला, समझ मिली, मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अब इसको अभ्यास में लाने की जरूरत है। प्योरिटी, पवित्रता, इतनी जल्दी विचारों में शुद्धता आ जाए, दृष्टिवृत्ति में शुद्धता आ जाए, किसी आत्मा को देख करके उसके रूप रंग में आत्मा आकर्षित न हो, हमारे स्वप्न शुद्ध हो जाएं, चिंतन पवित्र हो जाएं, उसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ऐसे नहीं होगा। और वो मेहनत यही है कि मैं आत्मा, इस मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, मणि को देखने का अभ्यास करो। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, शरीर सांप है और सांप के अंदर, सांप के साथ एक मणि होती है, वो चमकती है। अगर तुम इस शरीर रूपी सांप को देखोगे तो ये तुम्हें डस लेगा, कहीं न कहीं आपको देह आकर्षित कर लेगी। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा के लिए बाबा ने एक मर्यादा की लकीर दे दी कि बच्चे, जब किसी से बात करते हो, जब किसी से मिलते हो, नाक झुकाने की जरूरत है, नाक बंद करने की जरूरत है, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन भ्रकुटी में देह दृष्टि जा रही, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, दोनों भाई भाई एक पिता के बच्चे हैं। और जितना आत्मिक दृष्टि का अभ्यास होता जाएगा, जितना देह से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर अनुभव से बात करता हूं। आप जब बिस्तर पर जाते हैं, लेटते हैं, तो इस बॉडी को जैसे 100 आसन में लिटाते हैं, ऐसे लिटा दो, जैसे 100 होता ना पड़ा मुर्दा, और अपने चारों ओर एक लाइट का सुंदर सा आकार इमर्ज करो। जितने बार, जब भी टाइम मिले, बैठ करके भी टाइम मिले, लेटे भी टाइम मिले, चारों ओर मेरे एक लाइट का सुंदर ओरा है, और उस ओरे में, उस आभा मंडल में मैं एक चमकती हुई मणि हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है। बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि अगर देह को ही देखने का अभ्यास है तो लाइट के देह को देखो। अगर सचमुच मेरी लगन है कि मैं संपूर्ण पवित्र बनूं, बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है, क्योंकि अगर जरा भी कोई मिक्स बात रह गई, अपवित्रता सूक्ष्म में भी मिक्स रह गई, तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। पावन तो बन के जाना है, बिना पावन बने हुए मैं आत्मा बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आज बाबा ने कहा ना, बीच में क्रॉस करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, बीच में रुकना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, वो किस चीज का फाइन है? अगर आत्मा संपूर्ण रिफाइन नहीं, माना प्योर नहीं है, रियल गोल्ड नहीं है, तो उसको कहीं न कहीं सजाओं का फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अंदर से जागृति ब्राह्मण जीवन में आनी चाहिए। जब मैंने इनको छोड़ दिया, जब मैंने इन विकारों से तलाक ले ली, तो फिर ये संकल्प मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों बार बार मुझे तंग करते हैं, क्यों मेरी देह पर दृष्टि जाती है, क्यों उसके विषय में चिंतन चलता है, क्यों ये कर्म इंद्रियां मेरी शीतल और शांत नहीं होती? अपने आप से बात करना, अपना शिक्षक अपने आप बनना, अपने को खुद समझाओ। कोई दूसरा समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा, दूसरा समझाने लगे कहेंगे देखा ये बड़ा आया योगी, बड़ा आया तपस्वी, अभी कौन बना है, कोई तो बना नहीं, अभी दिखाई नहीं देता, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी है। लेकिन जब एक अंगुली उधर जाती है तो तीन अंगुली किधर आती है? इसलिए कभी भी किसी की तरफ उंगली नहीं उठाए कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसा कर। बाबा कहता बच्चे ये आंखें बंद करो, अगर तुमको पावन बनना है, तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तुमको संपूर्ण चरित्रवान बनना है, तो मुझे अपने आप को बदलने के लिए क्या करना है, करो तपस्या, इसके लिए जिद करो, हट करो कि मुझे कोई भी कर्मेंद्रिय परेशान नहीं कर सकती, शीतल काया वाला मैं योगी हूं। एक एक बाबा का बच्चा शीतल काया वाला योगी, चेहरा भी शीतल दिखाई दे, कोई भी कर्म इंद्रियों के अंदर उत्तेजना ना आए। वो तभी हो सकता है जब बहुत गहरा अभ्यास सोल कॉन्शियस स्थिति का किया जाए, इस देह से बार बार अलग होने का अभ्यास, ये अलग है मैं अलग, ये अलग है मैं अलग। जितना जिसने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, बीज रूप स्टेज में रहने का अभ्यास किया, बाबा के बीज की शक्ति उसके अंदर आती जाती है। कई बार हम अपने संस्कारों को इतना सहज मोल्ड नहीं कर पाते हैं, बाबा की शक्ति की जरूरत है, लेकिन बाबा शक्ति उसे ही देता है जो बाबा के समान बन करके इसको याद करता है। आप देहमान में हो और बाबा से शक्ति मांग रहे हो, शक्ति आप तक नहीं पहुंचेगी। पहले अभ्यास के अंदर आप इस देह से अलग होने का अभ्यास करो, डिटैच होने का, न्यारे होने का, और फिर अनुभव करो कि उसी रूप में बाबा है और उसकी सब शक्तियां मेरे पास प्रवेश हो रही हैं। संस्कार चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे लगेगा कि मैंने इन विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए योग बल पवित्रता को बढ़ाता है और पवित्रता का बल योग को बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत। जितनी प्योरिटी आती जाती है, विचार शुद्ध होते जाते हैं, पवित्र बनता जाता, उतना योग शक्तिशाली होता जाता है, और जितना योग शक्तिशाली होता है आत्मा एकदम स्वच्छ पवित्र बनती जाती, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते, नेगेटिव भी समाप्त हो जाता, विकल्प तो बहुत बड़ी बात है, उन विकल्पों पर विजय हो जाए, व्यर्थ संकल्पों पर विजय हो जाए, सब अच्छा है, हर आत्मा का पार्ट अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं, हम सबके प्यारे सब हैं एक दूसरे के, लेकिन देहमान वाला प्यार नहीं है, खिंचाव वाला नहीं है, सब अपनत्व तो है हमारा सबका, लेकिन बॉडी कॉन्शियस वाला प्यार दुखी करता है, रुलाता है। इसलिए बहुत संभल करके ब्राह्मण जीवन में कहते हैं फूंक फूंक करके कदम आगे रखना होता है। जब मंजिल ऊंची होती है, मान लो आप अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हो, वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हो, मंजिल ऊंची है, आपको पता है इतनी सारी चढ़ाई है, और बीच में फिसलन रास्ता है, फिसल रहा है, चिकना है, तो क्या करेंगे? अगर थोड़ा भी लापरवाही की, इधर उधर देखा, तो कितने फुट गहरे खाई में चले जाओगे, कोई रोकने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहता है चढ़े तो चाखे ज्ञान रस प्रेम रस, और गिरे तो चखना चूर। ये है पवित्रता की खजूर। इसलिए बहुत ध्यान देना कि कभी भी अलबेलेपन में कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं देखना है, मुझे अपने आप को पावन बनाने के लिए मेहनत करनी है, इसके लिए मुझे प्रतिज्ञा करनी है, उसके लिए मुझे कोई न कोई प्रकार से कुछ छोड़ना पड़ता है। इसके लिए क्या छोड़ना पड़ता है? सबसे पहली परहेज बाबा ने बताई है कि कोई भी अश्लील चीजें मत देखो, जो आपके चिंतन में अश्लीलता पैदा कर दें। ऐसे पिक्चर्स नहीं देखो, ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ो, ऐसे सीरियल नहीं देखो जो बॉडी कॉन्शियस को जन्म देते हैं। आज जितने पाप हो रहे हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी हिंसाएं हो रही हैं, कारण तो मूल यही है, घर घर में टीवी का बुद्धू बॉक्स पहुंच गया और सब बड़े रुचि से देख रहे हैं और सब गंदगी उसके अंदर भरी हुई है। फिर कहते हैं हमारे बच्चे नहीं सुधरते, हमारे परिवार वाले ऐसे क्या करें, प्रश्न है। लेकिन उनके चिंतन को अशुद्ध बनाने वाली चीजें जो परोसी जा रही हैं, हम सब बाबा के बच्चे इसकी परहेज करें, नहीं देखना है। जो मेरे काम की नहीं है, जो मुझे लेना देना नहीं है, उन बातों को मैं क्यों देखूं, क्यों सुनूं, क्यों उसके लिए आपस में चिंतन भी करूं। आज फलाने एक्ट्रेस का फोटो था, आज फलाने व्यक्ति का फोटो था, चिंतन करने की क्या जरूरत है, एक दूसरे के आगे वर्णन करने की क्या जरूरत है। अगर हम सचमुच पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो हियर नो इविल, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, सोचने की तो बात अलग है। जो चीजें कर्म इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करें, ऐसी चीजों की परहेज जरूरी है। ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाओ, तली गली गरम मसाले वाले, जो आपकी उत्तेजनाएं बढ़ जाएं। परहेज क्यों बाबा ने बताई इन चीजों की, इसीलिए बताई ना कि शीतल काया बन जाए, शीतल योगी बन जाए। तो ये पवित्रता एक ब्राह्मण जीवन का मूल धर्म है और इसकी वर्तमान समय अति आवश्यकता है, क्योंकि इसी से दुनिया बदलने वाली है, इसी से कलयुग स्वर्ग में बदलेगा, नरक स्वर्ग बनेगा। और उसके लिए बाबा आया है, खास उसके लिए आया है। कहता मैं वो कोई काम के लिए नहीं आया हूं, इसी के लिए आया हूं, मैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तमो प्रधान को सत्तो प्रधान बनाने आया हूं। बाबा का केवल एक ही काम है और उस काम में हम सबके सहयोग की जरूरत है, और सबसे बड़ा सहयोग हमारे शुद्ध विचारों का है, पवित्र विचारों का है। जितनी शुद्धता पवित्रता जीवन के अंदर आती जाएगी, बाबा के कार्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। जहां पर कोई अपवित्र वातावरण बनता है, किसी सेंटर पर बनता है, बहुत बड़ा विघ्न पड़ने लगता है। बाबा का नाम एक तरफ बाला होता है और दूसरी तरफ वहां पर ब्रेक लग जाती है। इसलिए ध्यान देना कि हम सबको बाबा ने प्रवृत्ति के अंदर रखा है, घर गृहस्थ में रखा है, संसार के सब नियम पालन करने के लिए छुट्टी दी है, लेकिन इसके लिए कहता है कि अगर तुमको इसमें कोई बंधन आ रहा है तो इसमें कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। यहां तक भी माताओं को कहता है, पति को कह दो तुम मेरी भले दूसरी शादी कर लोगे, नहीं रह सकते हो, मैं नहीं विष दूंगी। इतनी पक्की हो जाओ जो अगर कोई तुम्हारे ऊपर उंगली भी उठाए तो डोंट टच। इतनी अंदर की धारणाएं अगर हमारी मजबूत हो जाएंगी, हमारे विचार पवित्र शुद्ध हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी एक क्रांति आ जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको कहता है कि अब इस नियम में बहुत दृढ़ता से इसका पालन करो, इसमें जरा भी गफलत नहीं करो। चलता है, होता है, कौन बना है, कई बाबा की बातों को टेका दे देते, जैसे आज बाबा ने कहा दल्लभ का तकिया लगा लेते, कि आठ ही तो पास होंगे, बाकी तो 16,000 भी सजाएं खाएंगे। बाबा की बातों को ही लेकर के बाबा को ही सुनाना शुरू कर देते। बाबा कहता बच्चे 8 और 108 तो मैंने डिवीजन फिक्स की है, ये तो गिनती की है, लेकिन आपकी डिवीजन है, माला है, तुम पास हो करके दिखाओ, मैं माला की लड़ियां बढ़ा दूंगा। इसलिए इसमें बहुत दृढ़ता के साथ एक चरित्र को सामने रख करके कि मेरा ब्राह्मण जीवन का चरित्र बड़ा ऊंचे से ऊंचा हो, तो हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो, हमारी अंदर की भावनाओं में कोई भी प्रकार का स्वार्थ न हो, क्योंकि लोभ वृत्ति बहुत पाप करा रही है। भ्रष्टाचार जो आज कहते हो, लोभ वृत्ति के कारण फैला हुआ है। लोग कितनी ठगी, कितनी चोरी, कितने पाप कर रहे हैं इसके पीछे, पैसे के पीछे, ये भी चरित्रहीनता की दूसरी निशानी है। और बाबा कहता बच्चे तुमको कुछ नहीं है ऐसा गंदा काम करना जो फंस जाओ, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई हेरा फेरी वाला धंधा नहीं करो जो तुमको भी जेल की हवा खानी पड़े। बाबा के बच्चे बने हो तो बहुत सच्चाई से, सफाई से, दो रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्या जरूरत है झूठ कपट करके पैसा कमाने की। बाबा को कई बच्चे कह देते हैं, बाबा मैं लॉटरी में पैसा लगा करके लॉटरी जीत करके आपके कार्य में मदद करूंगा। बाबा कहता मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, बाबा को तो सच्ची कमाई चाहिए। सच्चे बच्चों की सच्ची कमाई, मेहनत की, खून पसीने की कमाई बाबा की यज्ञ में सफल होती है। और अगर ऐसा कोई है भी वो करके भेजता है, बाबा की भंडारी में भेज देता है, तो बाबा कहता वो भी सब तोड़ फोड़ में चला जाता है, जैसा आता वैसा चला जाता है। बहुत सच्चाई से अगर कमाओगे तो दो रोटी खाओगे, प्रभु के गुणगाओ, मस्त रहोगे, कोई चिंता नहीं, कोई नींद की गोली लेने नहीं पड़ेगी। अधिक पैसा कमाने वाले, झूठ बोल करके लेने वाले, इनकम टैक्स का डर, फलाने का डर, चोर का डर, ये डर वो डर, सब डर, वो भी चरित्रहीनता की निशानी है। और क्रोध तो दूसरा नंबर विकार है ही, महाशत्रु है। कभी भी उत्तेजना में आकर के किसी को मुख से अपशब्द न बोलना, बहुत शीतल, बहुत शांत, बहुत धैर्यवत। नहीं तो बाबा के बच्चे, बाबा कई बार कहता है कि एक बार गुस्सा कर देते हैं तो 6 मास तक उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। इसलिए कोई भी कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे सामने कितना नुकसान भी दिखाई दे रहा हो, बाबा कहता बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ, उत्तेजित नहीं हो, उत्तेजना में आके कटु वचन नहीं निकालो, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत अभ्यास करो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कभी भी उत्तेजित होकर के जवाब नहीं देना है। हम लोगों को बाबा ने जैसे पक्का करा दिया है, कभी भी मुख से एक शब्द भी ऐसा न निकले जो लोगों के दिल में दर्द पैदा करे, दुख पैदा कर दे। एक एक बोल ऐसा हो जो बाबा कहता तौल के बोलो, गिनती के बोल बोलो, महावाक्य आपके मुख से निकले, वो सिद्ध होने वाले बोल निकले। ऐसे नहीं जो आया वो बोल दिया, जब आया वो बोल दिया। ये पवित्रता की तीसरे नंबर की धारणा है। एक प्योरिटी है, दूसरा लोभ है, तीसरा क्रोध है। ये 3 बातों पर अगर ध्यान है तो चरित्र सबसे अच्छा है, चरित्रवान व्यक्ति है वो। फिर अंदर ही अंदर एक पाठ पक्का करो, नियम और मर्यादा के अंदर। कितने भी संबंध क्यों न हो, लेकिन मेरा तो एक, दूसरा न कोई। दिल का प्यार, दिल का संबंध एक बाबा के साथ। हर बात में पहले नंबर में बाबा की याद आए, देहधारी के पीछे। ठीक है, संबंध है, सहयोग है एक दूसरे के प्रति, लेकिन मेरा तो एक, दूसरा। किसी को दिल नहीं देना, बस। ये दिल दिलवाला की है, किसी भी व्यक्ति पर आकर्षित न हो जाए। कितना भी सहयोगी हो, कितना भी पैसे से सहयोगी हो, कितना भी सेवा में सहयोगी हो, कोई आत्मा मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। उसका भाग्य बनाए, वो भगवान के कार्य में मदद करे, मुझे क्या चाहिए। इसलिए बहुत अंदर से कुछ नहीं चाहिए कि एक अंदर की वृत्ति बन जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा जो खिलाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, मैं बाबा की से पालना लूं, कोई व्यक्ति के आधार पर मैं टिकी हुई नहीं हूं। तब बाबा एक ही याद आए, हर परिस्थिति में बाबा सामने आ जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई। एक ध्यान देने योग्य बाबा की शिक्षा याद रखना, वर्तमान समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स प्रवृत्ति मार्ग के अंदर आ रही हैं, और वो आती हैं शक की बीमारी के। शक समझते हैं, अनुमान, शंका, संशय, बहम, डाउट, ये सब क्या है। परिवार के बीच में अगर पति पत्नी के संबंध में डाउट पैदा हो गया, कभी भी शांति नहीं रहेगी। ज्ञान योग का नशा ही उड़ जाता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके अंदर इतना नशा, इतना उमंग होता है, लेकिन किसी दिन ये कीड़ा अगर लग गया दोनों के संबंध के बीच में। मैं एक प्रैक्टिकल की बात सुनाता हूं। मैं गीता पाठशाला में कुछ दिन पहले गया था। माताजी बहुत निश्चय वाली, बहुत भावना वाली, और इतनी अच्छी पाठशाला उनकी चल रही थी। पति बहुत बड़ा ऑफिसर था, कभी कभी बेचारा क्लास में जा पाता था, लेकिन उसको बहुत खुली छुट्टी थी पत्नी को, तुम बड़े प्यार से सेवा करो, घर में गीता पाठशाला चलाओ। 10-12-15 अच्छी अच्छी माताएं क्लास में आती थी, मैं गया था उनके पास, इतना नशा उसको था, बात मत पूछो। लेकिन जब उसका पति रिटायर हुआ तो उसको आया कि पत्नी ने तो बहुत बड़ा भाग्य बना लिया, मैं भी कुछ सेवा करूं खूब अच्छी तरह से। तो रिटायर होने के बाद बार बार बहनें उसको बुला लेती थी, गाड़ी भी थी, साधन भी थे, पैसा भी था, तो नेचुरल है जब सहयोगी कोई ऐसी आत्माएं मिल जाती हैं तो कोई भी काम होता है बहनें फट से उसको ही फोन कर देंगे। और जब बार बार उसने फोन करें और उनको जाए, वो चला जाए खुशी खुशी से, तो क्या होता होगा, धीरे धीरे उस माता के अंदर शक पैदा हो गया कि ये बहन बार बार इसी भाई को क्यों फोन करती, इतने सारे और भाई भी हैं। बस इतना शक घुसा और उसके बाद उसकी खुशी धीरे धीरे गायब होती गई, उमंग खत्म हो, चेहरा एकदम मूंझने लगा कि ये बहनें बार बार उसको बुलाती, उसी के साथ जाती हैं, जहां सेवा होती उसको ले जाती हैं, उसको ही गाड़ी में, उसकी गाड़ी में जाती हैं। पता नहीं बहनों का कोई उनके साथ चक्कर तो नहीं है। बस अंदर अंदर बोले कोई कुछ नहीं, कोई को नहीं बोली उसने, लेकिन बोल बोल सोच सोच करके इतना डिप्रेशन में चली गई जो उसकी खुशी गायब हो गई, उसका नशा ही उतर गया। मैं पहुंचा अचानक एक बार फिर दोबारा गया, हमने देखा, मैं क्या हो गया, कहां से घुन घुस गया, क्या हुआ, क्या है, कुछ नहीं बोले, बताया नहीं कुछ, क्या बताया अभी। मैंने भाई से पूछा, क्या हुआ भाई, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी प्रवृत्ति, खुशनुमा स्वर्ग लगा पड़ा घर में, अभी आज क्या हो गया। बोला इसके अंदर कोई कीड़ा घुस गया है, अब इसको निकालेगा कौन। बाबा कहता है जिसके अंदर बहम होता है ना, उसकी दवाई लुकमान हकीम जो सबसे बड़ा था ना, उसके पास भी नहीं होती, कोई के पास दवाई नहीं, भगवान के पास भी नहीं उसकी दवाई। इसलिए ध्यान रखना कि परिवार के बीच में किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे कुछ भी करे, भले करे, सही भी कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन मुझे सक करके क्या जरूरत, उसका भाग्य है, उसका पार्ट है, उसके कर्म है, वो जाने ना, उसका हिसाब किताब है। मैं किसी भी आत्मा के प्रति रिंचक में भी ऐसे साधारण संकल्प भी न करूं कि इसका इसके साथ कुछ होगा, मैं अपना रिकॉर्ड अच्छा रखूं, दूसरे का रिकॉर्ड अपने आप अच्छा हो जाएगा। शुभ भावनाएं रखो, सहयोग दो, स्नेह दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शक की बीमारी, ये बहुत जबरदस्त बीमारी है, अगर किसी को लग गई तो ये ब्राह्मण जीवन अकाले मौत हो जाता है, मारता कोई नहीं, अपने आप मर जाता है, ये कैंसर की बीमारी है, कोई दवाई नहीं इसकी। इसलिए बहुत ध्यान रखना, कहीं घुस ना जाए। बहुत नॉर्मल रीति से हर आत्मा के पार्ट को देखो, एक का पार्ट दूसरे के साथ नहीं मिलता है, एक का भाग्य दूसरे से भेंट नहीं करता है। मुझे किसी के प्रति कोई अनुमान नहीं लगाना है, मैं ठीक हूं, जग ठीक है, जहां मैं गलत हूं वहां दूसरे पर नजर जाती, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तीसरी एक बात, कभी कोई इशारा मिले, कोई शिक्षा मिले, बाबा कहता अगर सत्य है तो सत्य अपने आप सिद्ध होता है, जिद क्यों कर रहे हो, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। जिद्दी संस्कार लोगों की नजरों से गिरा देते हैं, इसलिए कोई बात में जिद करने की जरूरत नहीं। कोई बात कही गई, इशारा मिला, अगर नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है, ये मेरे पर झूठा आरोप है, ये मेरे लिए ऐसा क्यों कहा गया, मेरे लिए क्यों ऐसा वातावरण बनाया गया, जिद करने लगते हैं। बाबा कहता है जो जिद सिद्ध करता है वो झूठ जरूर है, नहीं सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सत्यता अपने आप में एक सूरज है, उसकी चमक कभी छिपती नहीं है। अगर मैं सत्य हूं तो सत्य अपने आप एक दिन आ जाएगा सामने, इसलिए कभी भी जिद और सिद्ध नहीं करना। और सूक्ष्म में भी अगर किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से कहीं भी सूक्ष्म लगाव हो, लगाव हमेशा बदबू देने लगता है। कोई चीज लग जाती है ना, हलवा बना रहे हो, खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अगर वो कहीं लग गई, तले में लगने लगी तो बदबू मारेगी। व्यक्ति में भी अगर कहीं अटैचमेंट हो गई, लगाव हो गया, तो वातावरण बनने लगेगा, खुशबू फैलने लगी उसकी भी। किसी से भी थोड़ा सा भी अधिक झुकाव हो गया, उसके बाद उससे बिना बोले नहीं रह सकते, उसको फोन के बिना नहीं रह सकते, उसको दिल की बात सुनाए बिना नहीं रह सकते। अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जहां लगाव होते हैं वहां सूक्ष्म में झुकाव शुरू हो जाते हैं। झुकाव होते हैं तो प्रभाव शुरू हो जाता है, और प्रभाव व्यक्ति डालता है तो फिर बाद में जब प्रभावित हो जाती आत्माएं तो दबाव डालती है, ये तुमको करना ही पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म लगाव की रस्सियों को चेक करना। मोह को जीत सकते हैं, लगाव एक सोने की जंजीर है। लोहे की जंजीरें हमने काट दी, कोई मेरा नहीं रहा, लेकिन किसी की विशेषताओं से भी लगाव हो गया। अच्छा लगना भी एक लगाव की निशानी है। अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, कोई व्यक्ति विशेष मुझे अच्छा लगता है, माना मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, लगाव है। इसलिए लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, इनको चेक करो। और सूक्ष्म में भी है तो समझ लो हमारी मर्यादाएं टूट सकती हैं, ईश्वरीय मर्यादा में विघ्न आ सकता है। इसलिए लगाओ किसी भी देहधारी से, यहां तक भी बाबा कहता है इस देह से भी लगाव नहीं रखो, संभालो, समय पर खिलाओ, सुलाओ, साथ हो, पालना करो इसकी, लेकिन इसके साथ अटैच इतना नहीं हो जाओ जो हाय हाय करना पड़े। लगाओ मुक्त, ऐसी स्थिति अगर हमारी बन जाएगी ना तो एकदम दिखाई देगा ये मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है। मर्यादाएं वहां टूटती हैं। आप देखो सीता ने मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कब किया, क्या हुआ? एक आकर्षण, पहली आकर्षण, दूसरी परखने की शक्ति की कमी, परख नहीं सकी ये राम की आवाज है या कोई छल से राम की आवाज निकाल रहा है। आवाज को भी परख नहीं सकी, हिरन को भी परख नहीं सकी, राम समझा भी रहा है ये सोने का हिरन नहीं होता है, नहीं नहीं सोने का हिरन मुझे चाहिए। फिर जिद, पहली आकर्षण, दूसरी परखने की शक्ति, तीसरी जिद, फिर चौथी भी बात फिर मिक्स कर दी, रावण के बहुरूप को पहचान नहीं पाई और फिर मर्यादा को उल्लंघन किया, सदा के लिए शोक वाटिका, अशोक वाटिका नहीं, शोक, गम ही गम, दुख ही दुख, राम को भी भटकना पड़ा। हम सब बाबा के बच्चे मर्यादा की लकीर का संकल्प में अंगूठे को भी बाहर न निकाले। जो बाबा ने मर्यादा बना के दी है, लक्ष्य मन देखा, मन को जो लक्ष्य दिया है उस रेखा का उल्लंघन न हो। लक्ष्य मिला है ना हमें ब्राह्मण जीवन में, तुम्हें ऐसा होकर के रहना है। जितने लक्ष्य बाबा ने हम सबको दिए हैं पवित्र और योगी बनने के लिए, उन कोई भी लक्ष्य का मन से भी उल्लंघन न हो, वो है लक्ष्मण रेखा। कभी शोक का अनुभव नहीं होगा, कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। एक बार बाबा ने पवित्रता की गहराई बताई थी, कई मुरलियां चली बाबा की। एक बार बाबा ने कहा अगर दुख और अशांति का अनुभव होता तो भी पवित्रता का खंडन है, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जननी को प्राप्त, जननी हमारे साथ है तो बच्चे उसके पीछे पीछे आएंगे, मां साथ है तो बच्चे कहां जाएंगे। लेकिन बच्चों को हम ढूंढ रहे हैं और मां को भूल गए, सुख और शांति के पीछे भटक रहे हैं, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है उस पर ध्यान नहीं है। इसलिए पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर कभी भी दुख की अनुभूति हो, कभी भी अशांति की अनुभूति हो, आप चेक करना गहराई में जाकर के, एकांत में जाकर के, कहीं न कहीं सूक्ष्म में किसी न किसी नियम मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। मैं सार रूप में इस क्लास को यहाँ समाप्त करूंगा, फिर आपके एक दो प्रश्न हैं उनका भी उत्तर देंगे, फिर आपके अनुभव भी हमें कुछ एक के सुनने हैं, क्योंकि चार दिन पूरा भट्टी की आप सबने क्या संकल्प लिया, क्या पाया, क्या छोड़ा वो भी सुनेंगे, लेकिन सार इन चार बातों में मैं सुनाता हूँ। ये सब नियमों मर्यादाओं की सहज धारणा हो जाए उसके लिए जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास करना, बाहिमुखता में सब विकार प्रवेश हो जाते हैं, जितना अंतर्मुखी उतना सदा सुखी। बाहिमुखता में आना नहीं, न वर्णन करना है, न बोलना है, न देखना है, न सुनना है, सब बाहिमुखता को बंद करो, जहां जहां दिखाई दे बाहिमुखता है उसको स्टॉप करके अंतर चले जाओ, अपने आप से अंदर जाके देखो, बातें करो, अंतर्मुखी बन जाओ। दूसरा एक ध्यान, दूसरा ध्यान रखना कि जितना हम सबके साथ रहते हुए बैलेंस से चलें उतना ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। बैलेंस ही ब्लेसिंग का आधार है, बैलेंस टूटे नहीं। चाहे आपकी प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति वाले ये न कहें सन्यासी बन गया, और सन्यास जो हमने लिया है उस सन्यास लेने वाले के लिए वो न कहा जाए ये तो गृहस्थी हो गया। इसलिए बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार का, जितना व्यवहार के लिए समय उससे ज्यादा परमार्थ के लिए है, परमार्थ और व्यवहार के लिए साथ 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 चलाओ। जितना न्यारे उतने प्यारे, इतने प्यारे नहीं बन जाओ जो अटैचमेंट हो जाए फंस जाए, और इतने न्यारे नहीं बन जाओ जो लगे तो कोई काम के नहीं रहे तो सन्यासी बन गए। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, बैलेंस से चलेंगे तो बाबा की सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगे। तीसरा, भावनाएं हमारी कभी कम न हो। कई बार भक्ति मार्ग की जो भावनाएं हैं वो अंधश्रद्धा वाली भावनाएं बन गई। बाबा हमें अंधश्रद्धा में फंसाता नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं परिवार के प्रति, बाबा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, भोग के प्रति, बाबा के अवतरण में कभी भी शंका पैदा हो जाए और सोचने लगो ये क्या है, सब भक्ति ही तो है। जैसे भक्ति के अंदर भोग लगाते हैं ऐसे यहां भी लगा रहे हैं, जैसे भक्ति के अंदर करते वैसे यहां भी कर रहे हैं। तो बाबा कहता है भावनाएं बहुत जरूरी हैं, भावनाओं का ही बाबा भूखा है, लेकिन भावुक नहीं बनो, भावनाएं जरूर रखो। अंधश्रद्धा वाली भावनाएं नहीं है, ज्ञान युक्त भावनाएं चाहिए, विवेक के साथ भावनाएं हैं। इसलिए भावनाएं जहां हैं वहां सदा प्रगति होती रहेगी, भावनाएं कभी कम नहीं करना। न बाबा में भावना कम हो, न भोग प्रति भावनाएं कम हो, न परिवार के प्रति भावनाएं कम हो, न बाबा की मुरली के प्रति भावनाएं कम हो, आपकी सदा प्रगति होती रहे। भावना का तो भाड़ा भक्ति में मिलता है और ज्ञान में भी बाबा भावना वाले बच्चों को सब प्रकार के अनुभव करा देता है, और विवेक वाले बेचारे विवेक शून्य रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको। इसलिए भावना और विवेक का बैलेंस रख करके चलना। अभी दो प्रश्न जो हमारे पास सभी अभी बताए थे बहन जी ने, एक तो जब दादी जी का जन्म हो गया तो दादी जी की आत्मा कैसे आती है गुलजार दादी में, क्योंकि दादी का जब भोग लगता है 25 अगस्त को तो हर साल दादी का हम आह्वान करते हैं, उनके महावाक्य भी सुनते हैं, उनकी दृष्टि भी लेते हैं, अनुभव भी करते हैं, तो कईयों के प्रश्न उठ जाते हैं, लेकिन ये सब संगम के सुहेज हैं। आत्मा कभी शरीर छोड़ के नहीं आती, जिस शरीर में चली गई वो निकल के आती है वो नहीं, दादी जी के संपूर्ण स्वरूप को बाबा इमर्ज करता है। दादी जी का जो संपूर्ण स्वरूप वतन में है, हम सबका भी है, आपने देखा होगा ब्रह्मा बाबा जब थे तो बाबा का भी स्वरूप ऊपर दिखाई देता था, संपूर्ण स्वरूप, अभी तो दोनों एक हो गए, लेकिन बाबा के होते भी ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त आत्मा का आवाहन करते थे, वो संपूर्णता की निशानी है। तो दादी जी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो वतन में रहता है, इमर्ज है, साकार जो संगम का स्वरूप है। अभी जो नया जन्म लिया उस स्वरूप को बाबा इमर्ज नहीं करता है, नहीं तो यहां बच्चा बन के डांस करने लगेगी, वो आत्मा नहीं आती है। आत्मा एक ही है, लेकिन जो संपूर्णता के संस्कार हैं वो बाबा इमर्ज कर सकता है, कभी भी प्रवेश करा सकता है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि दादी की आत्मा कहां से आई, दादी की आत्मा तो चली गई, लेकिन उसका संपूर्ण स्वरूप, उसके संस्कार जो प्यूरिटी के हैं, जो पालना के संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज करता है। इसलिए उसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। अब ज्वालामुखी योग उस बच्ची को क्या पता है जहां जन्म लिया होगा, बच्चा या बच्ची जो भी हो। अब दादी इस बारी आई थी तो बोला बच्चों को ज्वालामुखी योग पर ध्यान देना चाहिए। उस आत्मा ने नहीं कहा जो जन्म लिया जा करके, लेकिन जो वतन में संपूर्ण आत्मा है बाबा के साथ जो है वो हमें डायरेक्शन दे रही है, माना वो संस्कार जो दादी के हैं वो इमर्ज होते, आत्मा आती जाती नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात कोई ने पूछी कि जब बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो नॉलेजफुल आत्मा, परम आत्मा, सब कुछ जानी जाननहार, फिर एक लिमिटेशन क्यों आ जाती है? ऐसा ही प्रश्न था ना कि दादी जैसे बाबा जैसे जब आते हैं तो पूछते हैं, समाचार पूछेंगे, बातें पूछेंगे, जैसे बाबा को पता ही नहीं है और सब सुनाया जा रहा है। लेकिन ये आत्मा जब परम आत्मा, बाप और दादा की आत्मा जब दादी के तन में प्रवेश होती तो दादी जी के पास जितना मार्ज नॉलेज है, दादी जी का जितना ब्रेन डेवलप है, उसी ब्रेन को यूज कर रही वो आत्मा। शिव बाबा का ब्रेन यहां यूज नहीं हो रहा, यहां स्थूल बात आ गई। वतन में सब मर्ज है उसके पास, इमर्ज और मर्ज सब जानता है, लेकिन जब साकार तन में वो आ गया तो जो साकार माध्यम है उसके ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। अगर उसके कान बहरे हैं तो बाबा को भी सुनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुन तो सब सकता है, लेकिन दादी के कान में आवाज नहीं आ रही, उसको मशीन लगानी पड़ रही है। और अगर मशीन नहीं लगाया है, बाबा बैठा हुआ है, तो आप कितना भी बोल रहे हो नहीं सुन रही हो, बाबा नहीं सुन रहा है, क्योंकि दादी के ऑर्गन्स ठीक नहीं है। बाजा खराब है, बजाने वाला क्या करेगा? बजाने वाला बड़ा अच्छा है, लेकिन बाजा ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा? तो जिस प्रकार का बाजा है बजाने वाले की वही एक्शन दिखाई देती है। इसलिए दादी के अंदर या बाबा कोई लिमिटेशन में आ गया, बाबा के कोई पता नहीं है, बाबा तो जाने जाना नहार है, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो वतन में जब है तो सारा संस्कार इमर्ज है उसका, साकार में जब आ गया तो साकार के लिमिटेशन। समझ गए? मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्रतिभा भाई, अभी आपके हम अनुभव सुनेंगे, 15-20 मिनट ही है, 10 बजे पूरा करना पड़े, अमृत वेला भी करना है, इसलिए जो आज ही कुंती बहन आप आएंगे, आओ प्रतिभा भाई, माइक कैसे दे दो। दो भाई दो बहने, एक भाई पहले आए एक बहन आए, पहले कौन आएगा है? आओ आओ उठो जल्दी आओ, जो सुनाना चाहते हैं पहले आ जाओ।
अनुभव सुनाने के लिए सवेरे भी कहा था, पहले होमनाबाद से शशिकांत भाई आएंगे, बैठे हैं शशिकांत भाई, जल्दी आ जाइएगा। जैसे राजू भाई ने बताया क्या सुनना चाहते हैं, मधुबन महायज्ञ में आए क्या पाया, क्या दृढ़ संकल्प लिया, इस महायज्ञ में कौन सी कमजोरी को छोड़कर जा रहे हैं और क्या स्थिति श्रेष्ठ बनाने के संकल्प लिए हैं, वो सुनाएंगे हम सभी अनुभव में।
ओम शांति। भट्टी से तो सभी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, अब उसके लिए अनुभव सुनाए उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं और उन भावनाओं की भाषा भी नहीं होती है, तो इतना स्पष्ट बताए कि इतना सही है कि हमें जब 4-5 साल से भी ज्ञान में चल रहे हैं, हम समझे थे कि हमारी यात्रा बहुत स्पीड जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान हमने वरिष्ठ भाइयों ने हमें दी, हम उससे अगर कंपेयर करके देखें तो हम अभी बहुत पीछे हैं। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताए कि अगर कभी कभी इनको इसको सुनकर के बहुत खुशी भी होती है, कभी थोड़ा डर भी लग रहा है। इतने सूक्ष्म में हम पवित्र रहना, इतना छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना, इतने लगावों को भी मुक्त होना, तो ये गृहस्थी के लिए संभव तो है, असंभव तो नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आज हमने इस भट्टी से ये प्रेरणा ली कि ऐसे अब तक तो मोटे मोटे जो भी है उनको हमने कंट्रोल किया है, लेकिन छोटे छोटे बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, उनके ऊपर भी अभी हम कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ और तीव्र बढ़ाएंगे, ये प्रेरणा मैंने इस भट्टी से ली है। दूसरी बात, जो सभी भाई बहनों ने, सभी भाई ने जितने भी हमारे वरिष्ठ भाई हमारे लिए क्लास ली है, जो भी ज्ञान दिए है, उनके अनुभव सुनाए है, इतना ही चाहते हैं सभी कि हम हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो, हम आगे बढ़े, बाबा के समान बने। तो इस बात में भी हमने ये संकल्प ली है कि हम बाबा के समान बनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हमारे चारों दम लगा करके कोशिश करेंगे। दूसरी बात रही है, चार सब्जेक्ट जो है, चारों सब्जेक्ट में भी इक्वल मार्क्स हमें नहीं मिलते, ऐसा मुझे मेरा अनुभव है, लेकिन अब इससे प्रेरणा मिली कि चारों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स हम लेने की, थोड़ा ज्यादा कम हो जाए लेकिन फिर भी पास तो हो जाएंगे, ऐसा मुझे अभी विश्वास हुआ है। तो मैं इस मंच पर सभी वरिष्ठ भाइयों को, दीदियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
दिल से कष्ट नहीं होना कोई भी, बाबा साथी है। इस बारी जब दादी से मैं दो दिन पहले राखी बंधवा रहा था तो एक स्लोगन निकला कि आप बच्चे, आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार से कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाली आत्मा हो, ऐसा कोई स्लोगन था। तो दादी कहती है आपको ही तो बनना है ना, कोई दूसरा थोड़ी बनने वाला है, कोई दूसरा थोड़ी आएगा बनने के लिए, बाकी छोटी मोटी जो कमियां हैं बाबा अपने आप भर देगा, आप डरना नहीं। संकल्प में पक्के हो जाओ कि मुझे बनना ही है बाबा के समान, बाकी जो बातें हैं छोटी मोटी वो बाबा अपने आप सब ठीक कर देगा। बनेगा तो आप ही, कोई दूसरा तो ऊपर वाला तो नहीं आएगा ना। इसलिए कभी भी संकल्प में साधारणता नहीं लाना। ओके, अब कौन आता है?
सविता में। ओम शांति। वैसे ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन मधुबन यहाँ के जो महारथी भाई बहनों ने हमको ज्ञान की जो रस, उसकी जो गहराई में लेके गए, अभी ऐसा लग रहा है कब कब जाऊं, कब कब उसको अपनी दिनचर्या में फिट करूं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, ये मैं सोचती रही। और ज्यादा मेरा दिनचर्या ऐसा है कि 3:45 को उठती हूँ तो 15 मिनट में फ्रेश होके अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद तुरंत रेडी होके भोजन बनाना पड़ता, एक के बाद एक 7 को जाता, एक 8 को, एक 9 को, उसके बाद 9:30 को मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस जाते ही वापस घर पहुँचने तक 7:30 आके फिर चाय पी के शायद 20 मिनट योग करती हूँ, उसके बाद रात के भोजन 10 बजे खत्म होती है, थोड़ी सी और मुरली पढ़ के। तो मैं बाबा से पूछती आप ज्वालामुखी योग करो, सेवा करो, ये करो बोलते, लेकिन इस शेड्यूल में मैं कैसे करूं? और इसके लिए छोटी छोटी युक्तियां यहाँ पर जो मिली वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रैक्टिकल भी लगी। जैसे कि 500 रूप की बहुत अच्छा भाई ने बताया गाने के रूप में, और कम से कम 50 लोगों को आप आत्मा रूप में देखो। और ऑफिस में भी ऐसा होता है कि निरंतर कोई ना कोई कस्टमर मेरे पास होता ही है, तो ऐसे फ्री वैसे होती नहीं हूँ। तो ये सब छोटी छोटी जो युक्तियां हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में यूज करके बाद में हमें रस के रूप में दिया, मैं बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ और साथ में उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति दे मुझे, ऐसे मैंने प्रतिज्ञा की है और करूंगी भी शायद। ओम शांति।
बीजी के साथ अभी इजी भी हो जाएंगे। अभी बाल्टी से बाबू भाई।
ओम शांति। अनुभव तो बहुत सारे सभी को हुए हैं, लेकिन टाइम के अंदर ही एक दो बातों में अनुभव सुनाने हैं। जैसे हम सभी बिदर से यहाँ आए हैं, सभी हमारे मन बुद्धि सभी के फ्रैक्चर हुए थे, तो यहाँ आने के बाद ज्ञान योग की बैंडेज बांधी गई मजबूत से और खान पान की दवाई दी गई। मैं समझता हूँ हम सभी अभी बिल्कुल तंदुरुस्त बने हैं, फिर फिट बने हैं, और हम अब मैदान में जरूर उतरेंगे और लड़ाई लड़कर जरूर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। और बाकी रहा कि क्लासेस तो यहाँ बहुत कुछ हुए, और अभी लास्ट अभी जो राजू भाई जी की जो क्लास हुआ, मैं अपने अनुभव मेरा अनुभव तो ये कह रहा है कि ये सभी क्लासों का शिरोमणि रहा। मैं उनके सम्मुख की कोई तारीफ की बात नहीं है, मेरे जहां तक ख्याल है सभी को भी ऐसे अनुभव हुआ ही होगा। और बाकी रहा इस क्लास में जो कुछ जितने क्लास हुए, इसके पूरा सार एक वाक्य बन रहा है, उसका प्रयोग। जितने क्लासेस सभी बहने बाबड़े सभी भाई वगैरह जो गए, उसका प्रयोग किसका, उसका प्रयोग ABCD ऐसा इसका बना। क्या बना? एक भाई जी ने आए, प्रभुलिंग भाई जी ने उड़ो और उड़ाओ सिखाए, और एक भाई जी आए सब स्वाहा करो कहे, और राजू भाई जी ने भी बताया पहले क्लास में सब समर्पण करो कहे, और जो है ना निरंजन बहन जी ने बोले कॉन्शियस बनो बोले, ये उसका हो गया। और प्रयोग, और छोटेलाल भाई जी ने सब प्रयोग करो बोले, ज्ञान का और योग का प्रयोग करो, और आत्म प्रकाश भाई जी ने आए सब योग करो, ज्वालामुखी योग करो, वो योग करो, और जो है ना बाकी एक ने उषा बहन जी ने कहे कि गलती मत करो, अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है ना गलती करो ना गफलत करो। और सतीश भाई ने बोला जो मधुरवाणी के भाई जो है गहराई में जाओ, और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी भाई ने जो कहा ABCD करो बाकी आगे मत बढ़ो, ये भी मत करो, ये होगा तो एक्स्ट्रा होगा एक्स्ट्रा नहीं हो। लेकिन मैंने ये समझा ये की जरूरत है, लेकिन जो जो हमने यहां से ले गए इसको इमर्ज करो, एक्स्ट्रा नहीं करो लेकिन जरूर इमर्ज करनी पड़ेगी। और बहुत सी बातें तो हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सभी इतने सब कुछ हमारे ऊपर जो इतना मेहरबानी हो गई, जो ये मधुबन है ये तो महातीर्थ ही है, लेकिन पांडव भवन परम तीर्थ है। लेकिन यहां तो क्या है, अभी जब हम यहां आए तो मैं सोचा था जो सतयुग में स्वर्ग होगा, तो ये संगम पे हमने स्वर्ग का सुख यहां 4 दिन में जरूर पाए। हम सभी राजयोगियों का 4 स्तंभ है, तो 4 दिन में हमारे 4 स्तंभ मजबूत हो गए, लग रहा है हम जरूर पक्के राजयोगी बने। और जो क्लासेस हुए उस सभी क्लासेस में यह ऐसा रहना पड़े, यह कहना पड़े, यह करना पड़े, ऐसे सब बातों में आ गए। ऐसा बाबा बाबा कहना पड़े, बाबा बाबा कहे, जैसे भट्टी भट्टी को हिंदी भट्टी के बदले में मैंने इंग्लिश भट्टी लिख दिया, BHE WT I। ब्राह्मण भाई लोगों ने क्या करते हैं, अगर हिंदी लिखने नहीं आए तो उसको इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बी के लिए कई जो शब्द जोड़ सकते हैं हम, कई भी ज्ञान की बातें जोड़ सकते हैं। बी के लिए जैसे भाई ये बाबा बाबा कहो, बाबा बाबा कहो, बेहद में रहो, बेफिक्र बादशाह बनो। ऐसे एच के लिए क्या है, हाँ जी कहो, हाँ जी कहो, और हंस बनो, ऐसे ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, ऐसे ये सभी बातें के करें। तो इसमें सभी ये के लिए क्या है, आत्मा आत्मा कहो, है ना, अलर्ट रहो, ऑलराउंडर बनो। पी के लिए क्या है, तेरा तेरा करो, मेरा मेरा नहीं, इधर ही ज्ञान की जो बातें हैं ये ऐसी बातें होंगी, तो तेरा तेरा कहो, और तपस्वी रहो, त्यागी बनो, और एक जो टी है उसमें क्या, ट्रस्टी ट्रस्टी कहो, टॉलरेंट रहो यानी सहनशील रहो, और त्रिकालदर्शी बनो। आय माना ईश्वर अपना साथ है तो डरने की क्या बात है, ये कहते रहे हैं, कहते रहे हैं। और इनोसेंट एकदम इन्फेंट इनोसेंट रहे, और इच्छा मात्रा में विद्या हम सब बने। मैंने ऐसा इस भट्टी से ये सीख लिया। पहले जो मैंने योग करता था अमृत वेला, वही 4:15 उठना, 4:15
वैसे ही मुंह धो लिया और करा, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो पूरा नाके ही हमने अमृत वाला योग किए, रोज नहाना करके, और मैंने ये तय कर लिया है आज से मेरा जब भी अमृत वेला होगा ना के बिना हुआ है, होगा ही नहीं, पहली धारणा एक लिए। और इतने सब बहुत बातें हैं अभी तो, ये तपस्या धाम यहाँ की तो पांडव भवन तो क्या है, जहां जाओ वहां गम ही गम है। गम शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक गम होता है इंग्लिश गम बोन, और हिंदी गम होता है दुख, यहाँ इंग्लिश गम लगा हुआ है। जहां भी जाओ, कहां ज्ञान चिपक जाएगा तो कहीं योग चिपक जाएगा, नहीं तो यहाँ कहीं दिव्य गुण चिपक जाएंगे, है क्या नहीं, नहीं तो सेवा भाव चिपक जाएगा। कहां भी जाओ हमने ये देखा, हमने शांतिवन में गए, शांतिवन में हर बार जाते थे, वहां रहते थे, वहां तो जैसे स्वर्ग लगता था, लेकिन यहाँ तो स्वर्ग है ही, जैसा क्या नहीं है। तो इतना सब बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप सबके तरफ से सभी को धन्यवाद के लिए एक गीत के दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ सभी के लिए। मेरे को तो गीत आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, कोई कहने के बाद भी बोले नहीं, लेकिन दिल कहता है। सभी यहाँ जो दादी जी, जो भाई लोग, महारथी भाई लोग, बहनें, जो जो हमारे लिए इतना अपना जो कुछ अर्पण किया, हमारे अपना अपना समय दिया और अपना जो भी अनुभव दिया, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम सभी ब्राह्मण फुलवाड़ी के फूल, सभी आत्मा रूपी तारे, तो कुछ शब्द कहें, अच्छा लगे तो आप भी कहें मैं कहने के बाद। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, कोटों में ए दादी भाई बहने हैं, कोटों में दादी भाई बहने हैं, सारी उम्र हमें संग रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ला ला ला, धन्यवाद।
बहने हैं क्या?
कैनेडा से बहन आई है, उसको भी सुनाना। ये भी आपका भी सौभाग्य रहा, हम सबका भी सौभाग्य रहा।
कैनेडा से है? हम यहाँ टोरंटो से आए हैं। पहले मैं बोलूंगी ओम शांति सबको। हम यहाँ टोरंटो से आए हैं और जब भारत में आते हैं तो अहमदाबाद में रहते हैं और चिलोड़ा सेंटर से जुड़े हुए हैं, जहाँ तारा दीदी है उनका बहुत हमें साथ मिलता है। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे मन में, मेरे अंतर में जो भी स्फूर्णा हुई वो आपके सामने प्रकट करूंगी। स्वप्न में भी सोचा न था, स्वप्न में भी सोचा न था, पलकों में सजा देंगे, पलकों में सजा देंगे, बीदर के भीतर बिठा देंगे, बीदर के भीतर बिठा देंगे, ज्ञान की भट्टी में सहभागी बना देंगे, ज्ञान की भट्टी में सहभागी बना देंगे, मेरे बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। शशि बहन निमित्त आत्मा बनी, शशि बहन निमित्त आत्मा बनी। जब हम अंदर आए तो उन्होंने बोला भट्टी चालू होने वाली है, कल से आप ज्वाइंट हो जाओ। तो शशि बहन निमित्त आत्मा बनी। बाबा के शांति दूतों ने ज्ञान रस पिलाया हमें, बाबा के शांति दूतों ने ज्ञान रस पिलाया हमें, माता कुंती का मधुर स्मित मिला, माता कुंती का मधुर स्मित मिला, प्रतिमा बहन का प्यार, दादी का दुलार मिला, साथ में मिली सौगात, दादी का दुलार मिला, साथ में मिली सौगात, बीदर ने बिरदाया हमें, कहते हैं कल्प पहले मिलवाया था, ये कल्प में मिलवाया हमें, मेरे बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। सच में लग रहा है बाबुल के घर आई हूँ, झोली भरकर जा रही हूँ, सच में लग रहा है
बाबुल के घर आई हूँ, झोली भरकर जा रही हूँ। वादा है बाबा परमपिता परमात्मा तुमसे, जो पाया है वो लुटाते चलेंगे, जो पाया है वो लुटाते चलेंगे। ओम शांति।
एक माता का है थोड़ा सा। कोई बहन ने एक पत्र प्रश्न लिख करके दिया, प्रश्न नहीं उसका अनुभव है। कहती है मैं बार बार जब योग में बैठती हूँ तो ऐसे अनुभव होता है किसी गुफा के अंदर जा चली गई और वहां पर बाबा की लाल लाइट उसको अनुभव होती है, तो ये क्या ठीक है? ऐसा कर ऐसे प्रश्न इसमें बाबा कहता है कई प्रकार के अनुभव होते हैं योग के अंदर। जब एकांत में हम बैठते हैं, बाबा की याद में चले जाते हैं, तो जिस प्रकार के संकल्प होते हैं कई बार वो संकल्प दृश्य के रूप में सामने आते हैं। तो अगर वो संकल्प भी हमारे होंगे तो बाबा आपको उसी संकल्पों के आधार से उस दृश्य का अनुभव कराता है। तो ये गुफा शब्द का कई बार आपने मनन किया होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भ्रकुटी की गुफा में मैं आत्मा हूँ, तो गुफा शब्द से आपके सामने वो एक स्थूल गुफा ही होगी, और वो स्थूल गुफा जहाँ सन्यासी लोग गुफाओं में तपस्या करते हैं, तो ऐसी गुफा के अंदर बाबा का अनुभव होता है। इसलिए इसका यही राज है कि हम सब बाबा जो कह रहा है कि गुफा के अंदर रहो, गुफा माना सेफ्टी का स्थान। तो इस सेफ्टी के स्थान में जब आत्मा भ्रकुटी के अंदर रहती है तो हर प्रकार से सेफ रहती है, कोई भी प्रकार का वार नहीं होता विकारों का। तो आपको जो अनुभव हो रहे हैं उस अनुभव को और बढ़ाओ, गलत नहीं है, अच्छा अनुभव है। और संकल्पों की उत्पत्ति के आधार से ही दृश्य इमर्ज होते हैं, ठीक है।
और एक बात पूछा है, जब भी हम बटियां करते हैं तब एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब तो करना ही है, लेकिन दिन बीतते बीतते दृढ़ता कम हो जाती है और प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं। इस भट्टी में भी हमने प्रॉमिस तो अपने आप से बहुत किए हैं, लेकिन दिन बीतते बीतते दृढ़ता कम ना हो जाए, इसके लिए दृढ़ता को दृढ़ कैसे बनाए उसकी युक्ति बताओ।
इसके लिए आपको बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा, यहाँ के अनुभवों को हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन सेंटर पर ऐसी तपस्या करो, करते करते ये रिवाइज होता रहेगा तो भूलेगा नहीं, क्योंकि जब भूल ही जाएंगे तो दृढ़ता कहाँ रहेगी। इसलिए इस बात को जो अनुभव अच्छे किए हैं, जो संकल्प किए हैं, वो डायरी के अंदर लिख दो और बीच बीच में वहाँ पर खुद भी घर में भी रिवाइज करो और सेंटर पर संगठित रूप में बीच बीच में ऐसी भट्टी करते रहो तो ये सदाकाल के लिए बन सकता है। कोई चीज भी संस्कार में तब प्रवेश करती है जब वो बार बार कर्म में लाई जाती है। तो आपका भी ये संस्कार बन जाए दृढ़ता का, वो तभी होगा जब आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे।
बहुत धन्यवाद राजू भाई जी का भी। हम सभी आज अंतिम क्लास आपसे सुने, ब्राह्मण जन्म को बाबा चोटी जन्म कहते हैं, ऐसे सभी क्लासों में आज मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की बातें आपने जो हम सबके सामने रखी, मैं समझती हूँ सबका विशेष अटेंशन गया होगा। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संबंध, संपर्क, सब में, स्वप्न में कैसे हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, तो इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ अभी हम सभी बाबा को लाख लाख शुक्रिया देंगे। उससे पहले कुंतीबेन डायरेक्शन देंगे।
ओम शांति। राजीव भाई की एडजस्टमेंट की शक्ति, वो अभी हमने 2 दिन में ज्यादा देखी है, क्योंकि कभी हमने उनको बोला सुबह करना, कभी कहा शाम को करना, आज भी हमने यही कहा सुबह करना है, फिर दादी आई तो कहा शाम को करना है, फिर हमने कहा कि रात को करना है, फिर रात को भी हमने कहा कि पहले 8:30 करना है। बहुत हमने ऊपर नीचे किया राजीव भाई का, राजीव भाई लेकिन राजू भाई हर बात मुझे बोलते रहे कि बहन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, बस यही शब्द बोलते बोलते हमेशा उन्होंने ये साथ दिया। मैं कहा कि वैसे तो 8:30 से 9 हम अनुभव सुनने को तैयार थे,
लेकिन नीचे मुझे बुलाया क्लास के लिए, तो मैंने कहा अब मैं 8:30 जा रही हूँ तो कैसे करूँ। तो कहा ठीक है लास्ट रख देंगे, मैं पहले क्लास करा रहे। तो लास्ट में इन्होंने एडजस्टमेंट किया। तैसी एडजस्टमेंट की शक्ति बाबा अपने बच्चों के अंदर कैसे भर देता है। इसलिए ऐसे एडजस्टमेंट वाले राजू भाई का मैं भी धन्यवाद करती हूँ, और साथ साथ आप बिदर के भाई बहनों का भी, हमारी प्रतिमा बहन एवं अन्य देवी बहनें जो सेंटर निवासी साथी बहनें हैं, हमारी सखियां हैं, उन्हों का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए। इसलिए हमें भी मधुबन में आने के लिए एक मौका मिला। मुन्नी बहन ने कहा कि एक ग्रुप आ रहा है तो तुम आओगी, एडजस्ट करोगी। तो मैंने कहा ठीक है बच्ची है तो एक मौका है। तो इसलिए प्रतिमा बहन एवं साथियों का एवं आप भाई बहनों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हम ऐसे नहीं कि नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में ही हैं, मिलते रहेंगे। शांतिवन में भी बाबा के समय हम आते हैं तब भी मिलते रहेंगे। ये कल्प में मिले हैं तो हमारा मिलना तो होता ही रहेगा। लेकिन सभी के ध्यान पर रहे कि आज बच्ची समाप्त हुई है तो हम समाप्त ना समझें, आज से हमारी बच्ची आरंभ हुई है। प्रैक्टिकल कदम रखने की बच्ची तो आज से हमारी आरंभ हो रही है। उस बच्ची को प्रैक्टिकल कर्म में ला करके दिखाएंगे, लेकिन अमृत वेले का योग ना भूले। इसे सब अमृत वेले पुनः यहाँ पर योग के लिए आएंगे और 6:30 बजे ओम शांति भवन में सभी पहुंचेंगे, योग करेंगे, बाप दादा की मुरली को सुनेंगे। उसके पश्चात जो कार्यक्रम होगा वो आपको प्रतिमा बहन बता देंगे। ठीक है, ओम शांति।